पिछले कई रविवारों से भक्ति की चर्चा हो रही है। वैसे तो यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में भक्ति की ही चर्चा होती है, फिर भी विशेषतया भक्ति क्या चीज है और भक्ति के लक्षण क्या है, इसके बारे में चर्चा चल रही है। ये बतलाया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो शुद्ध भक्ति की जाती है उसके छह विशिष्ट गुण होते हैं, छह अभिलक्षण होते हैं। अभी ये छह लक्षण बार बार हम दोहराते आए हैं और इन छह लक्षणों का वर्णन तीन चार रविवारों से चल रहा है और आगे कई रविवारों तक चलेगा। ठीक है, आपको सुनना है, इसलिए जब तक ये छह लक्षणों का वर्णन समाप्त नहीं होता तब तक आप सबको ये छह लक्षण कंठस्थ होने चाहिए, सबको, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करने से क्या प्रकट होगा, क्या लाभ होगा, इसके गुण क्या हैं, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। तो भक्ति का सबसे पहला गुण कौन सा है, जोर से बोलिए। क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि मतलब भक्ति करने से हमारे सारे क्लेश या दुख नष्ट हो जाते हैं, हमारे पूर्व किए वो पापों का फल ये है दुख। दुख का मतलब क्या है, केवल हमारे पूर्व किए हुए पापों का फल। हम पाप क्यों करते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति होती है, पाप करने की प्रवृत्ति से पाप करने की इच्छा, पाप करने की इच्छा से पाप और पाप से दुख। लेकिन भक्ति करने से हमारे प्रारब्ध और प्रारब्ध दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरा लक्षण कौन सा है, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं देता, थोड़े ही भक्तों ने बोला, बाकी भक्त। शुभदा। शुभदा मतलब जो चीज अति शुभ है और हमारे जीवन को अति शुभ बनाता है, शुभता प्रदान करने वाली, यह है भक्ति। तीसरा लक्षण भक्ति का कौन सा है, जोर से बोलना चाहिए, जो आपने सुने हैं पहले कई रविवारों से। मोक्ष लघुताकृत मतलब भक्ति वो चीज है जिसके सामने मोक्ष भी बिल्कुल तुच्छ या लघु नजर आती है। मोक्ष को लघु बनाने वाली वस्तु है कृष्ण भक्ति। चौथी बात, चौथा गुण कौन सा है, सुदुर्लभा मतलब भक्ति प्राप्त करना ये बहुत ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ, इसलिए सुदुर्लभा। पांचवा गुण कौन सा है, शांद्रानंद विशेषात्मा मतलब भक्ति में ही हमें ऐसे एक विशेष और अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो सकती है जो बहुत गाढ़ा है, बहुत तीव्र आनंद है इसमें, केवल भक्ति में इतना तीव्र आनंद मिल सकता है। और आखिरी गुण कौन सा है, श्री कृष्णाकर्षिणी मतलब केवल भक्ति एकमात्र वस्तु है जो कि भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकता है, हमारा धन, हमारी शक्ति, हमारा सौंदर्य, हमारा घर, गाड़ी, बंगला, पद इत्यादि, ये भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, केवल भक्ति ही भगवान को आकृष्ट कर सकती है। तो ये है छह गुण भक्ति के, जिनका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं। क्लेश अग्नि का विस्तार में वर्णन हुआ है और पिछली बार शुभदा, इस गुण के बारे में चर्चा हम कर रहे थे। अगर किसी वस्तु को शुभ माना जाए तो कौन से गुण उसके अंदर या लक्षण होने चाहिए, कोई चीज अगर शुभ है, कहते बहुत शुभ चीज हमारे जीवन में हुई है, शुभ लाभ, तो वास्तविक शुभ वस्तु कौन सा है जो सबको लाभ दिलाता है, सबके हित के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, जो सबको आकर्षित करता है। तीसरी बात, जो हमारे अंदर अच्छे गुण पैदा करता है। और चौथी बात, जो श्रेष्ठ स्तर का सुख या आनंद प्रदान करता है। अगर कोई वस्तु ये चार चीजें कर सकता है तो हमें समझना चाहिए कि ये वास्तव में शुभ चीज है। तो पिछली बार ये पहले तीन गुणों का वर्णन हुआ था कि कृष्ण भक्ति शुभदा इसलिए है कि वो सबके हित के लिए है, सबको आकर्षित करती है, और भक्ति करने से भक्त के अंदर सारे सद्गुण खुद ब खुद उत्पन्न हो जाते हैं। और आखिरी एक गुण रह गया कि भक्ति सुदुर्लभा कहलाती है इसलिए भी कि भक्ति हमें वो सुख प्रदान कर सकती है जो कि श्रेष्ठ है। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अलग अलग प्रकार के सुख संसार में मिल सकते हैं, सही बात है। किसी को सिनेमा में जाके सुख मिलता है, किसी को दारू पीने में सुख मिलता है, किसी को यहाँ सत्संग में आके सुख मिलता है। अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे सुख जो हैं, इनका विभाजन तीन भागों में किया जा सकता है। एक सुख है इंद्रिय तृप्ति का सुख, संसार के भोग का सुख, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो। दूसरे प्रकार का सुख है एक तरह का आध्यात्मिक सुख, जिसमें जीव भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाना चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाके निराकार की उपासना करके वो भगवान के निराकार स्वरूप में मिल जाना चाहता है, लीन हो जाना चाहता है। इसको ब्रह्मानंद कहते हैं, ब्रह्म सुख। और तीसरा है भक्ति का आनंद, भक्ति का सुख। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा हृदय से करते हैं, शुद्ध भावना से करते हैं, तो इससे भी एक आनंद मिलता है, एक सुख मिलता है। तो ये तीन प्रकार के सुख हैं, इनके अलावा और कोई सुख नहीं है। लेकिन इन तीनों में से श्रेष्ठ सुख कौन सा है बताइए? भक्ति का सुख, भक्ति का सुख श्रेष्ठ है, इंद्रिय तृप्ति के सुख से भी ज्यादा और ब्रह्म सुख से भी ज्यादा। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ सुख है। क्यों भक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ सुख है बताइए? पहली बात यह है कि भक्ति का सुख जो है वो शाश्वत है, हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन जो अन्य दो प्रकार के सुख हैं वो क्षणिक हैं, नित्य नहीं हैं, थोड़े समय तक रहेंगे, बाद में क्षीण हो जाते हैं। और दूसरी बात, भक्ति का सुख इसलिए श्रेष्ठ है कि भक्ति के सुख के अंदर अन्य सारे प्रकार के सुख सम्मिलित हैं, और भक्ति में जो सुख की आनंद की तीव्रता की अनुभूति होती है वो सबसे ज्यादा है, बहुत मीठा है। इंद्र तृप्ति में भी और ब्रह्म सुख में भी इतना मिठास नहीं मिलता जितने की भक्ति में मिलता है। इसलिए भक्ति का सुख सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब केवल भक्ति का सुख जो है नित्य है और अन्य प्रकार के सुख नित्य नहीं है, इसको समझने के लिए थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले तो है इंद्र तृप्ति का सुख। संसार में कोई व्यक्ति जाके दारू पीता है, कोई जाके कोई और कार्य करता है जिससे सुख उत्पन्न होता है, वो सुख कितने समय के लिए रहता है? थोड़े समय के लिए रहता, फिर नष्ट हो जाता है। और यही जो सुख होता है वो वास्तव में दुख का कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कि हे अर्जुन, ये जो संसारी सुख है, जो इंद्र तृप्ति का सुख है, ये वास्तव में दुख का कारण है। इस सुख के पहले भी दुख होता है और सुख के बाद में भी दुख होता है। जैसे आपने सैंडविच खाया होगा, सैंडविच मालूम है ना आपको क्या होता है? सैंडविच में क्या पाया जाता है? दो ब्रेड के टुकड़े होते हैं मोटे मोटे, और बीच में कुछ हल्की सी मक्खन चटनी कुछ होता है ना? तो ब्रेड कितना होता है और मक्खन कितना होता है? ब्रेड बहुत मोटा होता है और मक्खन जो लगाते हैं बहुत पतला सा। तो उसी प्रकार से ये जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है वो हल्के से मक्खन के बराबर है, थोड़ा सा है, लेकिन उस मक्खन तक पहुंचने के लिए आपको ऊपर का ब्रेड और नीचे का ब्रेड खाना चाहिए। इसका मतलब है वो सुख प्राप्त करने के लिए, जो कि बहुत कम है, पहले बहुत दुख भुगतना पड़ता है और उस सुख का लाभ लेने के बाद बहुत दुख होता है। पहले दुख, बाद में दुख, बीच में थोड़ा सा सुख, और उस थोड़े से सुख के लिए हम क्या नहीं करते हैं। लोग अपना प्राण भी त्यागने के लिए तैयार होते हैं उस क्षणिक सुख के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आदि अंतवंतः कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, ये जो संसार का सुख होता है ये सुख नहीं है, केवल दुख का एक दूसरा नाम है, दुख का परिवर्तित रूप है। इसको कभी भी सुख मत समझना और इसको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करना, क्योंकि ये जो सुख बहुत कम समय के लिए रहेगा। इसलिए न रमते तेषु बुधः, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं कभी भी ऐसे इंद्रिय भोग में रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा सुख प्राप्त करने का मतलब है वास्तव में दुख प्राप्त करना। लेकिन कई अज्ञानी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यही सुख सबसे श्रेष्ठ है, और अपने पास अगर गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, भोग की सुविधाएं हो, तो फिर क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरे पास ये सारे भोग के साधन हैं, मैं इतना भोग कर सकता हूं, दूसरे लोग इतना भोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं भाग्यशाली हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन ये लोग वास्तव में अज्ञान के अंधकार में हैं, केवल बाहरी दुनिया के चमक धमक से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारे चीजें उनसे एक न एक दिन छीन ली जाएंगी। जो भी भौतिक परिस्थिति में हम इस समय हैं, वो हमेशा के लिए विद्यमान नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल वो परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। आज अगर हम करोड़पति हैं तो ये नहीं है कि हमेशा के लिए करोड़पति रहेंगे, जब मृत्यु आएगी तो हमारे एक एक पैसे को हमें यहाँ छोड़कर जाना होगा। इसलिए ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं, केवल संसारी सुख को सर्वश्रेष्ठ समझकर ज्यादा से ज्यादा इसका भोग करने का प्रयास करते हैं। ये भूलते हैं कि वास्तव में इसके परे भी एक सच्चा जीवन है, जो कि शाश्वत है, जो कि नित्य है। संसार का सुख कैसे है? जैसे कि पुराने जमाने में कभी एक राजा एक कैदी को दंड देता था, वो क्या करता था, उसको नदी में ले जाता था और कोई सिपाही उसको पकड़ता था और उसको पानी में डुबा देता था, पानी के नीचे रखता था 30 सेकंड, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और जैसे जैसे उसके सांस खत्म होने आई है, मरने ही वाला है, बस उसके थोड़े क्षण पहले उसको बाहर उठाते थे पानी से। बेचारा जब पानी के बाहर आता था सांस लेने लगता था, और जैसे ही इसने 2-4 सांस लिए कि दोबारा पानी में डाल दिया, फिर 1 मिनट 2 मिनट रख दिया, जबकि प्राय उसके प्राण निकलने वाले हैं, कि फिर से उसको पानी के बाहर निकाल दिया, फिर बेचारा सांस लेने लगता है, फिर से पानी में डाल दिया। ऐसे दंड दिया करते थे कभी कभी। तो ये जो कैदी है, जब उसको पानी में डाला जाता था लंबे समय तक, वो सांस नहीं ले पाता था, तो उसको लगता था कि सबसे बड़ा दुख दुनिया में यही है और कोई दुख नहीं है। अगर उस समय आप उसको बोलते कि आपका हम शायद सारा पैसा छीन लेंगे, वो क्या बोलेगा, ले लो लेकिन मुझे सांस लेने दो। सही बात है। और जब वो सांस ले पाता है उसको क्या लगता है कि सबसे दुनिया का बड़ा आनंद यही है। वाह, कितना आनंद मिल रहा है मुझे, मैं सांस ले पा रहा हूं, जी भर के मैं सांस ले रहा हूं। अगर उसके बदले आप कहेंगे मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, वो नहीं लेगा, क्योंकि उस समय जो आनंद उसको सांस लेने में मिल रहा है वो 10 लाख के नोटों में पानी के नीचे उसे 10 लाख के नोट दिखाइए आकर्षित नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु साधारणतः कोई सुख देने वाली बात नहीं है, लेकिन दुख की तुलना से हमें बहुत अच्छा लगता है, सुख लगता है, तो उसी प्रकार से संसार का सुख तो सुख नहीं है, तभी थोड़ी बहुत दुख से हमें राहत मिलती है तो हम उसको सुख कहते हैं। और एक दृष्टांत ये संसार के तथाकथित सुख को समझने के लिए, कभी कभी सपने में हम देखते हैं कि हम राजा हैं और हमारे बहुत सारे रानियां हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, और हम हाथी पर सवार होकर जाते हैं और हम युद्ध में गए हैं, सारे राजाओं को हमने परास्त कर दिया है, सोना चांदी हीरे मोती हमारे पास हैं। तो ये सपने का सुख कैसा है, अच्छा लगता है ना, लेकिन कब तक अच्छा लगेगा, जब तक सपना है। जब सपना टूट जाएगा तो क्या होगा, अरे रे रे रे, अभी मेरे को फिर से फैक्ट्री में जाना है, फिर से काम करना है, फिर से अभी मुझे घर में पकाना है, फिर से मुझे परीक्षा देना है, फिर से पढ़ाई करना है, फिर वही बातें याद आ जाएंगी। तो जब तक आप वो स्वप्न देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन स्वप्न तो आखिर में स्वप्न है, कब तक टिकके रहेगा, खत्म हो ही जाएगा। तो इसलिए ये संसार का सुख जो है इसी तरह से स्वप्न का सुख है, थोड़े समय के लिए रहेगा, ये मिथ्या का सुख है, सच्चा सुख नहीं है। जैसे स्वप्न में हम सोचते हैं कि मैं राजा हूं, ये तो झूठा है, उसी तरह से हम ये बाहरी सपने में सोचते हैं, जागते हुए जो सपना देखते हैं उसमें हम सोच रहे हैं मेरा नाम ये है, मैं इस घर में रहता हूं, मैं इस कारखाने में नौकरी करता हूं, मैं इतना पैसा कमाता हूं, मेरे परिवार के सदस्य ये हैं, मैं उनका देखभाल कर रहा हूं। सब झूठ है, सब मिथ्या है। क्यों मिथ्या है, क्योंकि समय के लिए रहती चले जाती है। तो ये मिथ्या क्यों है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए रहता है। तो इस प्रकार से संसार का सुख ऐसे स्वप्न का सुख है। और एक दृष्टांत दे सकते हैं ये समझने के लिए कि संसार का सुख क्या है। कभी कभी समुद्र के तट पर बच्चे जाना पसंद करते हैं। बच्चे क्यों जाना पसंद करते हैं, वो रेती में बालू में खेलना पसंद करते हैं और वहां रेती के महल बनाते हैं, बड़े बड़े महल, छोटे महल, अपना घर, अपना राजमहल बनाएगा। कोई बच्चा सोचेगा ये मेरा राजमहल है और बनाकर फिर उसमें सैनिक घोड़े ये वो सब बनाएगा और उसके पास में बैठेगा। माता पिता बुलाते हैं, चलो चलो अभी समय हो गया जाने का, नहीं 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 मेरा महल है। लेकिन आखिर में क्या होता है, जब समुद्र का पानी आ जाता है और जब पिताजी बोलते हैं चलो अब तो चलना ही होगा, नहीं आओगे तो देखो लाठी हाथ में चलो, तभी बेचारे बच्चे को क्या करना पड़ता है, इतना सा कष्ट लेकर जो राजमहल बनाया है वो राजमहल छोड़ के जाना पड़ता है। और फिर पानी आ जाता है, पानी की लहरें आती हैं, राजमहल को तोड़ डालती हैं। ठीक उसी प्रकार से हम संसार में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े स्वप्न बनाते हैं, मेरे पास ये कारखाना है, ये घर है, मेरा ये कुटुंब है, बैंक में इतने पैसे हैं, हमने इतना भोग किया और करने वाले हैं। लेकिन फिर काल के लहरें आ जाती हैं और परमपिता कृष्ण बोलते हैं चलो अब काल की लहरें आ गई, बहुत समय से काल के समुद्र के तट पर बैठ के तुम्हारे तुम महल बनाते रहे हो, अभी इस जगह से चलो, नहीं 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 हमको नहीं जाना है, चलना ही होगा। मृत्यु सर्वहर्षचाहम,
मृत्यु के रूप में आकर मैं सब प्राणियों का सब कुछ हरण कर लेता हूँ हे अर्जुन, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। तो भगवान कृष्ण जब बुलाते हैं, ऊपर से जब बुलावा आता है तो कोई भी उससे छूट नहीं सकता है। पुलिस से बुलावा आता है तो आदमी भाग भी सकता है, लेकिन भगवान का बुलावा जब आता है कोई नहीं भाग सकता है, क्योंकि भगवान का बुलावा जगह जगह पहुंचेगा। जहां भी हम जाएंगे भगवान का बुलावा पीछे पीछे आएगा। तो उसी प्रकार से संसार का सुख ऐसा है जैसे बच्चे का सुख जब वो रेती के महल बनाता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि संसार का सुख बिल्कुल तुच्छ सुख है। कंडून येन करयोर वे दुख दुखम, केवल हाथों की जब खुजली होती है और हम हाथों को यूं रगड़ते हैं तो हमें क्या आनंद मिलता है, वही संसार का सुख है। लेकिन प्रहलाद बताते हैं कि ये बड़ा दुख है, दुख दुखम, दुखों में से दुख है ये इंद्र तृप्ति। इसलिए कभी भी संसार के सुख के प्रति, संसार के चमक धमक के प्रति हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये तो स्थूल रूप का भोग हो गया, लेकिन सूक्ष्म रूप का भोग भी हो सकता है, और इसमें भी एक आध्यात्म का स्वरूप लोगों को नजर आता है। वो सोचते हैं कि ये सब चीजें ये भी आध्यात्मिक हैं। जैसे कि जब थोड़े योगी होते हैं, ये योगी लोग ध्यान में बैठते हैं, हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं, फिर उनको कोई विशेष सिद्धि या शक्ति प्राप्त हो जाती है, और वो शक्तियां प्राप्त करके फिर से मनुष्य समाज में आते हैं और इन शक्ति का प्रदर्शन सब जगह करते हैं और फिर भोग करते हैं इन शक्तियों के द्वारा। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जल पे चल सकते हैं, जो हवा में उड़ सकते हैं, या एकदम छोटे अपने आप को बना सकते हैं। ये सब अष्टांग योग की सिद्धियां हैं। वास्तव में ये जो भी योग की सिद्धियां हैं ये सब भौतिक कलाएं हैं। लोगों को लगता है कि ये अध्यात्म है, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। कोई व्यक्ति भला हिमालय में बैठकर यूं ध्यान में बैठा हो ऐसे योग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, और ऐसे उसको विशेष सिद्धियां या शक्तियां प्राप्त हो भी जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर चुका है। ये भी भौतिक चीजें हैं। एक बार जर्मनी देश से एक विद्वान भारतवर्ष में आए और उन्होंने नाना प्रकार के योगियों को देखा, और उनके पास जो शक्तियां हैं, विशेष सिद्धियां हैं, अद्भुत से अद्भुत सिद्धियां, उनको वो देखा उन्होंने, लेकिन प्रभावित नहीं हुए क्योंकि वो बड़े बुद्धिमान थे। वो देखते थे कि ये सारी जो शक्तियां हैं, जैसे पानी के ऊपर चलना इत्यादि, ये तो विज्ञान ने भी कर लिया है। जैसे विज्ञान ने भी नौके बना दिए हैं, बोट बनाए हैं, बड़े बड़े बोट, तो हम भी पानी में चल सकते हैं, हम पानी में सवार हो सकते हैं। तो फिर ये योग सिद्धियां क्या है? ये योग सिद्धियां केवल सूक्ष्म भौतिक विज्ञान है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान है, ये अध्यात्म नहीं है। इसलिए मुझे योग सिद्धियों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो केवल भगवान की भक्ति करूंगा। देखिए ये बुद्धि है, लेकिन जन साधारण जो है वो इस बात को नहीं जानती है। कोई भी व्यक्ति आया, बालों में जटा, लंबी दाढ़ी, उसने कोई विभूति कहां से निकाल दी, थोड़ा सा सोना कहीं से निकाल दिया, तो तुरंत वो भगवान बन जाता है। सभी लोग उनको भगवान बना देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर हमें सोना चाहिए तो सराफ के पास जाएंगे, साधु के पास क्यों जाना है? तो लोग इस बात को नहीं समझते हैं। ये तो छोटी सी कथा शायद आपने सुनी होगी कि एक बार एक गांव का आदमी गांव छोड़कर हिमालय में तपस्या करने गया। उसकी इच्छा थी कि मैं बहुत सारी तपस्या करके विशेष योग सिद्धियों की प्राप्ति करूंगा, विशेष शक्तियों की प्राप्ति करूंगा। और उसने लंबे समय तक तपस्या की हिमालय में, और आखिर जब लौट के आया अपने गांव में, तो उसने घोषणा की सारे गांव के निवासियों के सामने कि मैंने तपस्या के बल पे यह सीख लिया है कि मैं जल के ऊपर चल सकता हूं। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे जल के ऊपर चल सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, आज ठीक दोपहर के 12 बजे मैं मेरे इस शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, तो आप सब आके देख सकते हैं। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए नदी के तट पर ये देखने के लिए कि ये व्यक्ति किस तरह से जल के ऊपर चल सकता है। और फिर वो व्यक्ति आया और वास्तव में जल के ऊपर उसने पैर पांव रखे और डूबा नहीं, गिरा नहीं पानी के अंदर और पानी के ऊपर चलता गया, नदी पार किया और फिर से घूम के वापस लौट के आया पानी के ऊपर चलते 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 और फिर से यहाँ पर लौट के आ गया। जब लोगों ने देखा तो हाहाकार मच गया वहां पर, सभी लोग पैर पड़ने लगे उसके, कोई माला डालने लगा, कोई क्या करने लगा, ये भगवान है ये वो, बहुत कुछ हो गया शुरू। लेकिन उनमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था, वो भेड़ चाल में नहीं गया आगे। उसने कहा कि अरे भाई सुनो, तुमने ये कला प्राप्त करने के लिए कितने साल तपस्या की? उस व्यक्ति ने बड़े गर्व से कहा, मैंने पूरे 12 साल तपस्या की। अच्छा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और सब गांव के निवासियों को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे 12 साल की तपस्या की कीमत 25 पैसे है। अरे मैंने 12 साल तपस्या की है, तुम बोलते 25 पैसे कीमत, क्यों ऐसे बोलते हो? कहा देखो, नदी अगर पार करके आना है वापस, तो ये नौके में बैठकर भी हो सकता है, यह नौका है, यह माझी बैठा है, मैं माझी को 25 पैसा दूंगा, वो मुझे उस पार लेकर ले आएगा वापस। तो मैं जो 1 मिनट की कमाई करता हूँ 25 पैसे, वो तुमने 12 साल लगाए, तो मतलब तुम्हारे 12 साल मेरे 1 मिनट के बराबर है। तो शक्ति किसकी ज्यादा है, मेरी या तुम्हारी? इसका मतलब है कि ये सारे जो शक्तियां हैं ये भी भौतिक हैं, और इन सारे शक्तियों को स्थूल रूप से भौतिक विज्ञान ने भी इसका आविष्कार किया हुआ है, संशोधन करके निकाला है। श्री रूप गोस्वामी फिर भी भक्ति रसामृत सिंधु में संक्षिप्त रूप में ये बताते हैं कि कौन से प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं ऐसे योगियों के, ताकि हमें जानकारी हो और हम कभी ऐसे योगियों के चंगुल में हम फंसे नहीं और हम इनसे प्रभावित न हो। केवल हमारी जानकारी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हमें यह जानना है। सबसे पहले जो सिद्धि योगियों को, अष्टांग योगियों को प्राप्त हो सकती है, उसको कहते हैं अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि मतलब वो सिद्धि जिससे हम अपने आप को इतना छोटा बना सकते हैं कि हम पत्थर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। सोचिए, आश्चर्य की बात है ना, क्या हम पत्थर के अंदर जा सकते हैं? नहीं। लेकिन आजकल विज्ञान के, तकनीकी ज्ञान के बल पर अभी हमने बड़े बड़े रेलवे लाइन बनाए हैं जमीन के नीचे, सबवे, और पहाड़ों को तोड़कर कोंकण रेलवे बनाया है, घाट, उसमें से पानी, उसमें से रेलवे लाइन जाता है। तो इस प्रकार से विज्ञान के बल पर हम पत्थर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन ये तो सूक्ष्म विज्ञान है योग का, जिसके एक व्यक्ति पत्थर के अंदर जा सकता है। ऐसी भी एक योग सिद्धि होती है जिसके द्वारा आदमी जल के ऊपर चल सकता है या जो हवा में उड़ सकता है। पहले के जमाने में आपने वो सब चित्र देखे होंगे, शायद बचपन में पढ़े होंगे ऐसे, कि एक दरी के ऊपर बैठकर आदमी फकीर जो है उड़ रहा है। ये हो सकता है, जो योगी हैं वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसे सिद्धियों से, शक्तियों से बिल्कुल आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब भौतिक चीजें हैं, और ये सारी चीजें आजकल विज्ञान ने निकाली है। हवा में उड़ना है, एरोप्लेन में बैठिए, पानी में चलना है, नौके में बैठिए, पानी के नीचे जाना है, सबमरीन में बैठिए। तो इन सारे चीजें करने के लिए भौतिक विज्ञान ने साधन बनाए हैं। और एक सिद्धि का नाम है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि के द्वारा आदमी बहुत एक विशेष अद्भुत कार्य कर सकता है, वो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। देखिए, अभी हम लोग आजकल इस गर्मी में हमको इतना कष्ट हो रहा है, बिजली चली जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं तो हम हाय हाय करने लगते हैं, और सूरज इतनी दूर है। मान लीजिए अगर हम सूरज के बहुत पास गए तो हमारी क्या हालत होगी, और सूरज के अंदर प्रवेश करना। लेकिन ऐसे योगी हैं जो सूरज के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और कैसे जा सकते हैं, किस वाहन पर जा सकते हैं, सूर्य किरणों के ऊपर सवार होकर सूरज के अंदर जा सकते हैं। देखिए ऐसी सूक्ष्म विद्या, फिर भी ये भौतिक है, फिर भी इससे आध्यात्मिक जीवन का कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे आजकल के वैज्ञानिक इन भौतिक सूक्ष्म विज्ञानों को भी समझ नहीं पाए हैं तो फिर अध्यात्म को क्या समझेंगे। और इसके बाद में और एक शक्ति है जिसको प्राप्ति कहते हैं, प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि से जो योगी होता है वो किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है, अपने हाथ को कितना भी लंबा बना सकता है, और बनाकर प्रभुपाद जी जैसे बताया करते थे कि यहाँ बंबई में या कलकत्ते में बैठकर वो अपना हाथ बाहर करेगा और अफगानिस्तान में काबुल शहर में जो दालिम्ब है उसको पेड़ से निकालकर खा सकता है। कहीं बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है, केवल हाथ को लंबा कर दिया, वहां से फल ले लिया, फिर से खाना शुरू कर दिया बस। तो इस प्रकार के योगी भी होते हैं, और ऐसे योगी यहां तक इतना भी कर सकते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर वो बहुत ही निपुण योगी है तो अपने हाथ को इतना लंबा कर सकता है कि अपनी उंगलियों से चंद्रमा का स्पर्श कर सकता है। देखिए ऐसी शक्ति, क्या विज्ञान में ऐसी शक्ति है? ज्यादा से ज्यादा जैसे कि हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हम लोग चांद पे गए हैं, गए भी होंगे तो रॉकेट में बैठकर गए हैं, और रॉकेट में बैठकर गए कितना कष्ट हुआ उनको, कितने करोड़ों करोड़ों रुपए उनको खर्च करने पड़े, लेकिन योगी के लिए कोई खर्च नहीं, सीधा चांद का स्पर्श कर सकता है हाथ को बढ़ाकर। प्राप्ति सिद्धि इसको कहते हैं। और एक जो सिद्धि है इसको इशिता सिद्धि कहते हैं। इशिता सिद्धि में योगी इतना बलवान हो जाता है कि किसी एक लोक या ग्रह का निर्माण कर सकता है, या किसी एक लोक या ग्रह को नष्ट कर सकता है। देखिए आजकल विज्ञान ने बड़े बड़े अणु बम बनाए हैं, एटम बम, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। लेकिन जितना भी बड़ा अणु बम हो, क्या वो सारे पृथ्वी लोक को नाश कर सकता है? नहीं। इतना बड़ा बम आज तक विज्ञान ने भी नहीं बनाया कि सारा पृथ्वी नष्ट हो सके। लेकिन एक योगी अगर निपुण हो और उसके अंदर ये इशिता शक्ति हो तो सारे पृथ्वी लोक को एक क्षण में नष्ट कर सकता है, या उसको निर्माण भी कर सकता है। रामायण में ये कथा आती है कि ये विश्वामित्र मुनि ये भी बड़े योगी थे, बहुत हजारों हजारों साल उन्होंने तपस्या किए, और एक दिन उनके पास एक राजा आए जिनका नाम था त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु ने कहा कि आप तो बड़े महान राजा हैं, तो कृपया आपके योग बल के सहारे मुझे आप स्वर्ग लोक भेज दीजिए, क्योंकि राजा होने के अलावा आप बड़े ऋषि भी हैं, बड़े योगी भी हैं। तो जब ऐसे मीठे शब्दों से उन्होंने विश्वामित्र मुनि की प्रशंसा की तो विश्वामित्र मुनि ना नहीं कह पाए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें स्वर्ग लोक भेज देता हूं। फिर अपने योग शक्ति से उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग लोक की ओर भेजा। अब त्रिशंकु ऊपर 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 जा रहे थे स्वर्ग की ओर। अब ऊपर स्वर्ग लोक में बैठकर इंद्र देख रहे थे, अरे ये कौन आ रहा है इधर हमारे लोक में? क्योंकि स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के लिए हमें क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। जब तक हमारी पुण्य की पूंजी जो है पर्याप्त मात्रा में बड़ी नहीं होगी तब तक हम स्वर्ग लोक में जा नहीं सकते हैं। स्वर्ग लोक में जाना है तो केवल पुण्यों की प्राप्ति करके। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा
तो अगले जीवन में हम स्वर्ग लोक में जन्म प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह से स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। लेकिन त्रिशंकु राजा क्या करना चाहते थे, इसी शरीर में और पुण्य प्राप्त किए बगैर वो स्वर्ग लोक में प्रवेश करना चाहते थे, जो कि संसार के या प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो फिर इंद्र ने उनको कहा, नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते, और वापस उनको भेज दिया। बेचारे राजा त्रिशंकु प्राय स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे, और फिर इंद्रदेव ने उनको वापस भेज दिया और उल्टे फिर गिरने लगे पृथ्वी लोक की ओर। और जब गिर रहे थे, जोर जोर से पुकारने लगे विश्वामित्र मुनि के लिए, बचाइए, अब क्या करूं, स्वर्ग लोक में कोई मुझे छोड़ नहीं रहा है। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, चिंता नहीं करो, और उनको वापस भेज दिया। फिर से इंद्र ने वापस कर दिया, तो बेचारे राजा त्रिशंकु फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे होते जा रहे थे। आखिर में जब विश्वामित्र मुनि अपनी सार योग शक्ति लगाकर त्रिशंकु राजा को स्वर्ग में बिठाने ही वाले थे, स्वयं देवताओं ने आकर प्रार्थना की विश्वामित्र मुनि से कि देखिए प्रकृति का नियम ऐसे भंग मत कीजिए, स्वर्ग लोक में केवल पुण्य करने वाला व्यक्ति ही स्थान प्राप्त कर सकता है। तो फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा ठीक है, और विश्वामित्र मुनि ने उसी क्षण एक नया ग्रह, एक नया लोक निर्माण किया और त्रिशंकु को वहां पर स्थान दे दिया, जो कि पृथ्वी लोक के और स्वर्ग के बीच में है। इसलिए आज भी ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति न इधर का है न उधर का, तो कहते हैं कि ये त्रिशंकु राजा के बराबर है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो विश्वामित्र मुनि एक ऐसे योगी थे जिनके पास ये सिद्धि थी, जिसको इशिता सिद्धि कहते हैं, और मनुष्यों को भी निर्माण कर सकते थे वो नारियलों की तरह, फटाफट फटाफट फटाफट, ऐसे सब योग सिद्धियां उस जमाने में थीं। आजकल ऐसे योगी लोग मिलते नहीं हैं, क्योंकि लोग कलयुग में इतनी तपस्या नहीं कर सकते हैं। और आगे एक सिद्धि है जिसको वशिता सिद्धि कहते हैं, जिससे आदमी दूसरे आदमियों को वश में कर सकता है। देखिए ये कितनी अद्भुत बात है, उसके मन को वश में करना, और फिर हम जो कहते हैं वो व्यक्ति बात मानेगा। देखिए कितनी सूक्ष्म और बड़ी इंद्रिय तृप्ति है। मान लीजिए अगर आपके अंदर ये शक्ति आ गई कि आपने सब दूसरों के ऊपर, मन के ऊपर आपको वश आ गया, और आपको जो चाहिए वही उनसे करा सकते हैं, क्या क्या ये एक प्रकार का नशा नहीं होगा? ये एक प्रकार का भौतिक भोग नहीं है, सूक्ष्म भोग, दूसरों के ऊपर नियंत्रण करना। और ये शक्ति इतनी होती है कि कोई इसको नकार नहीं सकता है, इसको कहते हैं वशिता सिद्धि। इसके बाद और एक सिद्धि है जिसको प्राकाम्य सिद्धि कहते हैं। प्राकाम्य सिद्धि मतलब जादू, मतलब वो ऐसे अद्भुत कार्य कर सकते हैं जैसे जल में पानी लेते हैं, आंखों में पानी लेते हैं और फिर आंखों से बिल्कुल पानी बाहर निकालते हैं, ऐसे विशेष अद्भुत से अद्भुत विचित्र कार्य कर सकते हैं। और इसके आखिर में और एक अद्भुत सिद्धि है जिसको कामा वैसायिता सिद्धि कहते हैं। ये और भी विशेष जादू है जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके ऐसी सिद्धि वो प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने सारे सिद्धियों का वर्णन किया है, और वो बताते हैं कि देखिए एक से बढ़कर एक ये जो भी सिद्धियां हैं, ये इतना सूक्ष्म इंद्र तृप्ति दे सकते हैं योगी को कि योगी तो पूरा भगवान को भूल ही जाता है। कल्पना कीजिए कि इन सारे सिद्धियों में से एक भी सिद्धि अगर हमारे अंदर होती, और वो भी थोड़ी मात्रा में, तो क्या हमारे मन में एक नशा नहीं हो जाता था इसका? मान लीजिए कि आप उड़ सकते हैं हवा में, क्या आप दिखाना नहीं चाहेंगे दूसरों को कि देखिए मैं उड़ सकता हूं? आप जल पे चल सकते हैं, तो क्या आप दिखाना नहीं चाहेंगे दूसरों को, मैं जल पे चल सकता हूं, देखो मैं कितना महान हूं? तो ये भी सूक्ष्म इंद्र तृप्ति है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी समझाते हैं कि ये भी इंद्र तृप्ति भौतिक है, ये चीजें केवल भौतिक सूक्ष्म विज्ञान है बस। इस सच्चे आध्यात्मिक जीवन से, सच्चे भक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है। और ये भी क्षणिक है, थोड़े समय के लिए रहेगा फिर नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो योग सिद्धियों से जो सुख मिलता है ये भी क्षणिक है, ये भी भौतिक है, लेकिन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और आगे भी चल के देखेंगे तो ऐसे कोई लोग हैं जो और सूक्ष्म सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान के निराकार में वो रुचि लेते हैं, निराकार में लीन होना चाहते हैं, लेकिन निराकार में लीन होने के बाद भी व्यक्ति वहां ज्यादा समय तक रह नहीं सकता। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कितने सारे ऐसे निराकारवादी सन्यासी हैं जो थोड़े समय निराकार की प्राप्ति करने के बाद में ऊंचा स्तर की प्राप्ति भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं होती है इसलिए फिर से भौतिक संसार में आते हैं और यहाँ पे राजनीति या समाज कल्याण के कार्य में लग जाते हैं, भौतिक क्षेत्र में फिर से आ जाते हैं। इसलिए ब्रह्म सुख ये भी क्षणिक है, हालांकि ये जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन फिर भी ये थोड़े समय के लिए रहेगा। केवल भक्ति एक ऐसा सुख है या आनंद है जो हमेशा के लिए रहेगा, कभी क्षीण नहीं हो जाएगा, बल्कि इसकी वृद्धि होती रहेगी होती रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है अन्य प्रकार के सुखों की तुलना से, क्योंकि भक्ति शाश्वत है और अन्य सुख शाश्वत नहीं है। और दूसरा कारण क्या है जिससे कि हम कहते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है, कि जो भक्ति का सुख है वो इतना तीव्र है, इतना विशाल है कि अन्य सारे सुख भक्ति में सम्मिलित हैं। शिवजी सती देवी से कहते हैं कि हे देवी, जो व्यक्ति भगवान श्री गोविंद के चरण कमलों में आश्रय लेता है उसको उन सारे सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है जो कि उन लोगों को प्राप्त होता है जो भगवान के निराकार की प्राप्ति करते हैं, और इससे आगे बढ़कर उसे भगवान के शुद्ध भक्तों का सुख भी प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि भगवान के भक्ति का जो सुख है वो निराकार के सुख से भी कहीं श्रेष्ठ है। इस प्रकार से भगवान के भक्ति से जो आनंद मिलता है वो इतना श्रेष्ठ है कि भक्त को इंद्र तृप्ति का सुख नहीं चाहिए, योग सिद्धियों का सुख नहीं चाहिए, ब्रह्म में लीन होने का सुख नहीं चाहिए, वो केवल भगवान की सेवा में ही संतुष्ट रहता है। और रूप गोस्वामी एक महान भक्त का वर्णन करते हैं, और वो वर्णन करते हैं श्रीधर कोलावेचा का। श्रीधर कोलावेचा चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे, वो नवद्वीप में रहा करते थे, बहुत गरीब थे, और जो भी थोड़ा कुछ पैसा उनको मिलता था, उनकी कमाई जो भी होती थी, उसके 50% जो है वो गंगा जी की सेवा के लिए खर्च करते थे। वैसे भी मिलता था बहुत कम, और जो भी मिलता था 50% गंगा जी की सेवा में जाता था। और चैतन्य महाप्रभु रोज वहां आया करते थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु का नाम था निमाई पंडित। अभी तक उन्होंने अपनी भक्ति को प्रकट नहीं किया था। निमाई पंडित या चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो वो भी जानते थे कि श्रीधर कोलावेचा कितने बड़े भक्त हैं। तो हर रोज चैतन्य महाप्रभु उनके साथ में जाके एक विशेष प्रकार की लीला करते थे। वो जाके हैरान करते थे बेचारे श्रीधर को, और बोलते थे, अरे श्रीधर देखो, तुम सदा कृष्ण का नाम लेते हो, हरि नाम लेते रहते हो, लेकिन तुम्हारे हरि ने तुम्हारे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। देखो तुम्हारे फटे हुए कपड़े हैं और तुम भूखे रहते हो, खाने को नहीं, पहनने को कुछ नहीं, तो क्या लाभ है? तो श्रीधर जवाब देते कि अरे देखो हे ब्राह्मण, मैं तो कभी उपवास नहीं करता, खाने को कम हो कोई बात नहीं, लेकिन आज तक मैंने उपवास नहीं किया है। और जहां तक कपड़े हैं, ज्यादा हो या कम हो, शरीर ढकने के लिए कुछ है मेरे पास। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि अरे देखो श्रीधर, जो लोग चंडी दुर्गा इनकी पूजा करते हैं, देखो कितने अमीर बन गए हैं, कितने शानदार कपड़े हैं उनके पास, कितना शानदार घर है, और देखो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजनों को चखते हैं, और ये देखो तुम्हारा घर भी देखो कैसा है, देखो छत में 10 जगह जो है वो छेद हैं, उसमें से बरसात की पानी टपक के गिरता है, और तुम्हारे कपड़े में भी देखो कितने सारे छेद हैं, और जो छेद है कपड़े को तुम गांठ बांध के उस छेद को बंद करते हो। तो ऐसी अवस्था में हरि का भजन का हरि भजन क्यों कर रहे हो? तो श्रीधर कोलावेचा उत्तर देते कि देखो हे पंडित, तुम तो बड़े विद्वान हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मुझे कहना यह पड़ रहा है कि चाहे कोई राजा हो जो एक बड़े से महल में बैठ के अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहा हो, अच्छे रेशम के कपड़े पहन रहा हो, या चाहे कोई पक्षी है जो बिना घर के एक वृक्ष के डाली में बैठी हुई है, छोटे छोटे दाने खाती है, दोनों के लिए समय एक समान बीतता है, अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल दोनों को भुगतना पड़ता है। तो मैंने जो पूर्व जन्मों के कर्म किए हैं उनका फल मुझे अब मिल रहा है, और जो वो लोग हैं जो चंडी विषहारी इत्यादि उनकी पूजा करते हैं उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तो समय सबके लिए एक समान है, तो इसमें तो कोई भ्रमित होने की बात नहीं है, मैं अपने हरि भजन में संतुष्ट हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो श्रीधर, मैं जानता हूँ तुम केवल गरीबी का ढोंग कर रहे हो। तो श्रीधर कहता, अरे मैं तो ढोंग नहीं करता। श्रीधर को समझ में नहीं आता कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु उनका मजाक उड़ा रहे थे, और श्रीधर कहने लगते है, अरे मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तो मेरे पास कोई छुपा हुआ धन नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु कहते, हाँ तुम्हारे पास एक ऐसा धन छुपा हुआ है, एक अनमोल खजाना है तुम्हारे पास, और किसी को नहीं मालूम है ये बात। और एक दिन मैं सबको ये सच्ची बात बताऊंगा कि तुम्हारे पास कितना बड़ा धन है। और श्रीधर को पता नहीं चलता कि निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन से धन की बात कर रहे थे? भक्ति। श्रीधर खोलावेचा भौतिक दृष्टि से बहुत गरीब क्यों ना हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अमीर थे, बहुत धनी थे, और उनके पास वो धन था जो कि मृत्यु भी नष्ट नहीं कर सकता है। ये संसार का धन मृत्यु नष्ट कर देता है, लेकिन भक्ति का धन जो है वो हमेशा हमारे साथ में रहेगा। और फिर से चैतन्य महाप्रभु उनको छेड़ते और बोलते, अरे श्रीधर ये तो बताओ, तुम क्या जानते हो कि मैं कौन हूं? तो श्रीधर बोलते, आप तो एक ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण तो विष्णु का अंश होता है, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं भाई, क्यों तुम मुझे रोज आके तंग करते हो? तो चैतन्य महाप्रभु कहते, देखो जिस गंगा की तुम रोज पूजा करते हो ना, वो मेरी दासी है, और वास्तव में ये जो भी ऐश्वर्य प्रदान करने वाले स्वामियों से मैं श्रेष्ठ हूँ, और मैं वास्तव में ग्वाल बाल हूँ गोपाल। और फिर श्रीधर हंस देते, उनको पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रहे हैं। वास्तव में निमाय पंडित अपनी असली पहचान करा के दे रहे थे, वो स्वयं बतला रहे थे कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, लेकिन श्रीधर इस बात को समझ नहीं पाते। और फिर चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को बोलते, चलो अब मुझे क्या दोगे, मुझे ये चलो केले के फूल और केले के पत्ते दे दो, और मुझे मुफ्त में दे दो। तो श्रीधर कोलावेचा बोलते कि देखो मैं पहले ही बहुत गरीब हूँ, और जो भी मैं कीमत में तुम्हें दे रहा हूँ वो बहुत ही कम कीमत है, उसके ऊपर तुम और कम कर दोगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा? लेकिन फिर श्रीधर मन ही मन सोचने लगते, तो ब्राह्मण है इसको नाराज करेंगे तो एक तो शाप दे सकता है, खतरनाक होगा हमारे लिए, और दूसरी बात बड़ा हट्टा खट्टा है शरीर से, नाराज होगा कुछ हमारी पिटाई कर देगा, हमारा क्या होगा। उपवास कर करके खाना कम होने से हमारे शरीर कुछ रहा नहीं, तो ठीक है जो इसको चाहिए वो दे दो, चलो ले लो जो चाहिए तुम्हें निमाई ले लो। और फिर महाप्रभु छीन के ले लेते और हर रोज दोपहर में श्रीधर कोलावेचा के पास से चोरी किए हुए केले के फूल के सब्जी लेते हर रोज, और उनके छत पे जो कद्दू होते या भोपला होता वो खाकर उसकी सब्जी वो रोज खाया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने श्रीधर कोलावेचा की पर असीम कृपा उन्होंने प्रदान की। कई दिन बाद निमाय पंडित जब भक्ति उन्होंने प्रकट की थी, वो फिर से अपने भक्तों को लेकर आए थे श्रीधर कोलावेचा के घर में।
इस समय श्रीधर के ऊपर बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने घोषणा की कि श्रीधर तुम ये बताओ
क्या चाहिए, जो भी वरदान जो चाहिए तुम मांगो। और श्रीधर कोलावेचा कहने लगे कि मुझे
कुछ चीज कोई भी चीज नहीं चाहिए,
अगर वरदान मांगना है तो केवल यही है कि हर दिन हमेशा आप मेरे घर में आके मेरे से झगड़ा करके मुझे हैरान करके मेरे केले के पत्ते और केले के फूल चोरी करके ले जाना है। ये श्रीधर कोलावेचा की प्रार्थना थी, मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए, केवल आप यहाँ आके मेरा माल चोरी करना। क्योंकि श्रीधर कोलावेचा जो है इतने शुद्ध भक्त थे कि उनको कोई भौतिक कामना नहीं थी। जब स्वयं भगवान उनके सामने आए और उनसे कह रहे थे कि मैं कुछ भी तुम्हें दे सकता हूँ, योग सिद्धि दे सकता हूँ, भोग सिद्धि दे सकता हूँ, तुम्हें निराकार का सुख दे सकता हूँ, लेकिन श्रीधर कोलावेचा हालांकि इतने गरीब थे फिर भी उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी लीला में शामिल होने का आनंद चाहिए, आपका निजी संग चाहिए, आपकी सेवा करने का मौका चाहिए। ये होती है भक्त की भावना, इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। श्रीधर कोलावेचा ऐसा क्यों कह पाए, कैसे साध्य है ये कि जब कोई आके हमें इतना कुछ देने के लिए तैयार हो और हम उन चीजों को बिल्कुल ठुकरा दें। ये तब संभव हो सकता है जब भगवान की भक्ति में हमें इतना श्रेष्ठ आनंद मिल रहा हो कि अन्य सारे प्रकार के सुख जो हैं भगवान की भक्ति के आनंद के सामने बिल्कुल तुच्छ हैं। इस प्रकार से रूप गोस्वामी बड़े विस्तार से समझाते हैं कि भक्ति का जो आनंद है वो सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए भक्ति शुभदा है। तो संक्षेप में फिर से अगर कहा जाए तो भक्ति का जो दूसरा लक्षण है शुभदा, इसके चार गुण होते हैं। एक कि वो सबके कल्याण का कार्य होता है, दूसरा सबको आकर्षित करता है, तीसरा भक्ति करने से सारे अच्छे गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, और चौथा कि भक्ति का जो आनंद है और सुख है वो सर्वश्रेष्ठ है और अन्य सारे सुखों से बेहतर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है?
मैं दो प्रश्न पूछूंगा संक्षेप में, कृपा करके बताइएगा। तो पहला तो है कि अध्यात्म और ये ब्रह्म तत्व ज्ञान संक्षेप में बताइएगा, और दूसरा है कि ये जो चारों आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इसमें से सबसे अच्छा आश्रम कौन सा है, कौन सा आप मानते हैं? धन्यवाद।
पहला प्रश्न है कि आत्म तत्व, आत्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान ये क्या है, ये प्रश्न है। आत्म तत्व का मतलब ये है ये समझना कि मैं कौन हूँ और मैं आत्मा हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है। मैं आत्मा हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, ये भी समझना आवश्यक है। अब आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दो चीजें हैं। मान लीजिए आप अपने आप को आईने में देखना चाहते हैं, आईने के सामने आप खड़े हुए, तो आईने के सामने खड़े होकर आप क्या देखते हैं? अपने आप को देखते हैं ना। लेकिन अपने आप को देखने के पहले आप क्या देखते हैं? रोशनी को देखते हैं। अगर सूरज की रोशनी है तो आप सूरज को देखते हैं पहले। अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो आप अपने आप को नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी पहले देखते हैं फिर अपने आप को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, जब हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं तो खुद आत्म साक्षात्कार उसमें सम्मिलित हो जाता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण को जान जाते हैं तो हम अपने आप को भी जान जाते हैं, और अपने आप को जानते हैं तो कृष्ण भगवान को भी जानना चाहिए। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, और दास होने के नाते हमारा नित्य संबंध उनके संग सेवा का है। ये सच्चा अध्यात्म है कि हमारे जो नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना, तो भगवान की सेवा करना, भगवान की शुद्ध भक्ति करना, यही वास्तविक अध्यात्म है। दूसरा प्रश्न कि चार आश्रम में से श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो भगवान का शुद्ध भक्त है, चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों न हो। हालांकि सन्यास आश्रम एक दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है, और जो वैराग्य का जीवन अपनाते हैं उनको अन्य आश्रमों ने सम्मान देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक भौतिक दृष्टि है। पूरी तरह से भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, भक्ति है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो चार आश्रम है ये एक भौतिक विभाजन है, लेकिन भक्ति ये आध्यात्मिक है और किसी भौतिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के पर कर सकते हैं? प्रश्न है तो माइक किसके पास? माइक
प्रभु जी।
हाँ जी, हाँ बोलिए।
Thank you.